त्रिशांक की बातों से नाराज होकर जाह्नवी गुस्सा होकर होटल के टेरेस पर गई। उसका पीछा करते हुए त्रिशांक भी वहीं आ गया। उसने देखा कि जाह्नवी वहां बैठकर रो रही थी। उसे रोता देखकर त्रिशांक ने अपने कान पकड़े और उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया। एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना था। ठीक है, अब जाओ यहां से, जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ऐसे कैसे चला जाऊं, पहले बोलो कि तुमने मुझे माफ कर दिया और तुम, त्रिशांक बोलते बोलते रुक गया। और क्या, जाह्नवी ने हैरानी से पूछा। और तुम उस जोकर से शादी नहीं कर रही। मैं तुम्हें इसलिए मना नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करती। तुम्हें अपनी लाइफ से जुड़े सभी डिसीजंस लेने के पूरे हक हैं। त्रिशांक की बात सुनकर जाह्नवी फिर से रोने लगी। त्रिशांक ने उसे चुप कराने के लिए उसे गले लगाया और कहा, प्लीज रो तो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारे राहुल के बारे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि तुमने राहुल के बारे वो सब कहा। मुझे रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सब सच है। उसने बोला था, उसे मैं पसंद तो हूँ लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैंने अपने घर वालों से भी कहा लेकिन वो मेरी सुन ही नहीं रहे। जाह्नवी त्रिशांक से अपने दिल की बात कहकर सुकून महसूस कर रही थी। त्रिशांक, तुमने अपने दिल की बात मुझे बता दी है ना, अब आगे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और हम भी, पीछे से आकांक्षा और अलीजा ने कहा। उन्हें अचानक सामने देखकर जाह्नवी त्रिशांक से दूर हो गई। उसे त्रिशांक से दूर देखकर अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले। चलो बहुत मजाक हो गया, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ और हमें इस बात का जवाब दो। क्या, आकांक्षा ने हैरानी से पूछा। जाह्नवी, अगर तुम त्रिशांक को पसंद करती हो तो उसे बता क्यों नहीं देती? क्या अभी तक तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि त्रिशांक एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है? अलीजा ने कहा। उसकी बात सुनकर जाह्नवी चुप हो गई और उसने त्रिशांक की तरफ देखा। वो भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। बोलो जाह्नवी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? देखो, मैं आज भी तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ जितना कि पहले, त्रिशांक ने पूछा। और तुम त्रिशांक से प्यार नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें राहुल नहीं पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। तुम अच्छे से जानती हो, दादू के बाद अगर मुझे कोई सबसे ज्यादा प्यारा रहा है तो वो तुम हो। मैं जिसे अपना समझती हूँ वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों भी। राजवीर जी का जिक्र आते ही आकांक्षा के शब्द अटकने लगे और उसकी आंखें डबडबा गईं। राजवीर जी आकांक्षा के आश्रम जाने के फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी राजपुरोहित जी के कहने पर वो आकांक्षा के साथ कांगड़ा के आश्रम में शिफ्ट हो चुके थे। थोड़े दिन तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद राजवीर जी बीमार होकर काल के ग्रास में समा गए। हमने से किसी ने नहीं सोचा था कि दादू इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। खुद को संभालो आकांक्षा, त्रिशांक ने उसे चुप करवाते हुए कहा। आकांक्षा ने अपनी भीगी पलकें साफ की और जाह्नवी से फिर से वही सवाल किया। तुमने बताया नहीं जाह्नवी, मैं अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही। मुझे त्रिशांक अच्छा लगता है, सच कहूं तो उसने मेरे दिल में भी जगह बना ली थी, लेकिन मैं तुमसे अलग हूं अक्षु। तुम रिवांश के सच को एक्सेप्ट कर सकती हो, लेकिन मेरा दिल आज भी त्रिशांक के सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आई एम सॉरी फॉर दिस त्रिशांक, जाह्नवी ने जवाब दिया। इस बात के लिए मैं तुमसे शिकायत भी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें फोर्स कि तुम मेरे सच को एक्सेप्ट करो। मेरे साथ वैसे भी तुम्हारी लाइफ आसान नहीं रहने वाली। जैसे ही त्रिशांक ने ये कहा तो अलीजा ने उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ाया और कहा, मेरे होते हुए तुम दोनों को इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे बनाए हुए पोर्शंस इतने कमाल के होते हैं कि जाह्नवी, तुम्हें फ्यूचर में त्रिशांक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन मैं इन सब से बाहर कैसे निकलूंगी? मेरे मॉम डैड, राहुल के मॉम डैड, इतने सारे रिलेटिव, इन सबको हैंडल करना आसान नहीं। राहुल ने तो सिर्फ मेरी फोटो देखकर ही मुझे पसंद कर लिया था। उसके पेरेंट्स और वो सिर्फ शादी के लिए यहाँ इंडिया आए थे। ऐसे में मैं शादी से इनकार करूंगी तो? जाह्नवी अभी भी असमंजस में थी। इन सब की फिक्र तुम मत करो। अरे, तुम्हारे दोस्त किस दिन काम आएंगे? और हमारा मैजिक, शायद तुम उसे भूल गई हो, आकांक्षा ने हंसते हुए कहा। राहुल एक अच्छा लड़का है लेकिन वो मेरे लिए सही नहीं है, मैं उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रही, जाह्नवी ने कहा। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो लड़का अच्छा है या बुरा? अभी तुम्हें मिले वक्त ही कितना हुआ होगा। तुमने बताया कि राहुल ने तुम्हारी फोटो देखकर ही पसंद किया था। तुम दोनों ने एक दूसरे को शादी के फंक्शन के दौरान ही देखा होगा। यूके में उसकी लाइफ कैसी थी कैसी नहीं, तुम्हें उसका कोई आइडिया नहीं है, त्रिशांक ने कहा। उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं राहुल को छूकर उसके पास्ट के बारे में बता सकती हूँ। ऐसे में हमें पता चल जाएगा कि वो अच्छा है या बुरा। अब फर्क भी क्या पड़ता है जब जाह्नवी उससे शादी ही नहीं करना चाहती, आकांक्षा ने अपनी बात खत्म कहा। उसके कहते ही जाह्नवी ने झट से अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए कहा, मैंने सुना है तुम्हारी शक्तियां इंक्रीज हो गई हैं, अब तो तुम्हें फ्यूचर और पास्ट देखने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मेरा हाथ पकड़कर बताओ ना मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, चलो अब नीचे चलते हैं, कल सगाई के फंक्शन की भी तो तैयारियां करनी है। और डोंट वरी, बाकी सब हम देख लेंगे, आकांक्षा ने कहा और जाह्नवी को नीचे ले जाने लगी। जाह्नवी ने जाते हुए त्रिशांक की तरफ देखा जो कि जाह्नवी की शादी टूट जाने की वजह से काफी खुश नजर आ रहा था। भले ही अभी जाह्नवी ने उसे डायरेक्टली हाँ नहीं कही थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में उसे पाने की एक और उम्मीद की किरण जाग गई। अगली सुबह जाह्नवी अपने कमरे में सगाई के लिए तैयार हो रही थी। आकांक्षा, अलीजा और त्रिशांक भी वहीं पर मौजूद थे। आकांक्षा जाह्नवी को तैयार कर रही थी जबकि अलीजा उसके पास में खड़ी थी। त्रिशान, जब जानवी उस राहुल से शादी करना ही नहीं चाहती तो तुम लोग उसे सगाई के लिए क्यों तैयार कर रहे हो? जानवी को राहुल के लिए तैयार होता देख त्रिशान को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए कि हमें थोड़ा ड्रामा भी तो करना पड़ेगा। जानवी नहीं चाहती कि वो डायरेक्टली जाकर शादी के लिए मना करे, क्योंकि वो पहले भी ऐसा करके देख चुकी है और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, आकांक्षा ने त्रिशान को समझाते हुए कहा। लेकिन हम उंगली को टेढ़ा करेंगे ही क्यों? घी को गर्म करो ना, या डायरेक्ट चम्मच से निकाल लो, क्यों उंगली खराब करना? त्रिशान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। तुम इन सबको नहीं समझोगे त्रिशान, अभी जो हो रहा है वो बस देखते रहो, जानवी ने उसे समझाने की कोशिश की। फिर उसने अलीजा की तरफ देखा और कहा, ऐसे तो बड़ी जादूगरनी बनी घूमती हो, अब कुछ ऐसा करो ना जिससे मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अलीजा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम ऐसा जादू करो कि ये इतनी ज्यादा बदसूरत लगे कि वो राहुल इसे देखकर ही डरकर भाग जाए। जैसे ही त्रिशान ने ये कहा, जानवी उसकी तरफ गुस्से में मुड़ी। मैं तो मजाक कर रहा था। उसे गुस्से में देखकर त्रिशान ने झट से अपने दोनों कान पकड़ लिए।
वो लोग अपनी ही बातों में लगे थे कि तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया और कहा, जल्दी करो, और कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आकांक्षा, जल्दी से जानवी को लेकर हॉल तक पहुंचाओ। बाहर से आवाज लगाने वाली जानवी की माँ थी। वो उन लोगों को नीचे आने का बोलकर वहां से चली गई। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, जानवी ने घबराहट के मारे आकांक्षा का हाथ पकड़ लिया। मेरे होते हुए कुछ भी गड़बड़ नहीं होंगी, मैं सब संभाल लूंगी। अलीजा, त्रिशान, तुम ऐसा करो कि जानवी को हॉल तक लेकर पहुंचो, मैं आती हूँ, आकांक्षा ने कहा। जानवी ने जाते वक्त खुद को एक बार फिर से आईने में देखा। पैस्टल सी ग्रीन ड्रेस में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जबकि उसके जस्ट पीछे त्रिशान खड़ा था जो कि उसी की तरफ देख रहा था। तुम्हें किसी की नज़र न लगे, त्रिशान उसके पास आया और ड्रेसिंग टेबल पर पड़े काजल को उठाकर उसके एक छोटा सा काला टीका लगा दिया। उसकी इस हरकत पर जानवी ने शर्माकर अपनी नज़रें नीची कर ली। त्रिशान और अलीजा जानवी को सगाई के लिए नीचे हॉल में लेकर गईं। उनके जाने के बाद आकांक्षा वहां बैठ गई। आकांक्षा ने वहां पड़ी सगाई की अंगूठियां उठाईं और बाहर आने के लिए निकल गईं। होप कि अब सब कुछ ठीक हो, आंटी ने मुझे नीचे वाले हॉल में आने के लिए कहा था, जल्दी से अंगूठियां लेकर पहुंच जाती हूँ। हे माता रानी, सब संभाल लेना, आकांक्षा बड़बड़ाते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। वो जल्दी से अंगूठियां लेकर नीचे जा रही थी। वहां जाते ही उसका ध्यान हॉल की डेकोरेशन पर गया, जो कि काफी खूबसूरती से सजाया गया था। वाओ, राहुल ने अरेंजमेंट तो काफी अच्छी करवाई है, आकांक्षा ने इधर उधर देखते हुए खोए हुए स्वर में कहा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अरे सगाई की अंगूठियां कहाँ रह गईं? तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? उनके बिना सगाई की रस्म कैसे होगी? भीड़ में से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। उसे सुनकर आकांक्षा का ध्यान टूटा। हे माता रानी, जल्दबाजी में सगाई की अंगूठी ले जाना भूल ही गई थी, बस ये जानवी की माँ मुझे सबके सामने डांट ना दे। आकांक्षा एक हाथ से अपना लहंगा तो दूसरे हाथ में सगाई की अंगूठियां संभालते हुए जल्दी से आगे बढ़ी। ये लीजिए आंटी, मैं अंगूठियां ले आई हूँ, सॉरी वो मैं थोड़ा काम में लग गई थी, बोलते हुए आकांक्षा का ध्यान सामने की तरफ से गया। सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन लोगों के देखने से वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। लगता है मैं गलत जगह पर आ गई, आकांक्षा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। वो उन सगाई की अंगूठियों को वापस लेकर जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र साइड में खड़े कपल पर गई, जिन्हें देखकर लग रहा था कि अभी इन्हीं की सगाई होने वाली होगी। उन्हें देखकर आकांक्षा के हाथ से अंगूठियां नीचे गिर गईं और उसने धीरे से कहा, तुम? क्रमशः